समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you, dear listeners, our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we will be sharing the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 28th of March.
जी बिल्कुल रेनू, और इसके अलावा अंत में हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं और मुख्य समाचारों का रुख करते हैं।
जी बिल्कुल। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the first phase of Noida International Airport at Jewar in Gautam Buddh Nagar district of Uttar Pradesh today. On the occasion, Mr. Modi will undertake a walkthrough of the terminal building of the airport. Later, the Prime Minister will also address the gathering. More from our correspondent.
Noida International Airport is among the largest greenfield airport projects in the country. Phase 1 of Noida International Airport has been developed at a total investment of around 11,200 crore rupees under a public-private partnership model. The airport will initially have a passenger handling capacity of 12 million passengers per annum with scalability up to 70 million passengers per annum open full development. It features a 3,900-meter runway capable of handling wide-body aircraft along with modern navigation systems including instrument landing system and advanced airfield lighting to support efficient all-weather round-the-clock operations. As a sustainable and future-ready infrastructure project, Noida International Airport aims to operate as a net-zero emissions facility integrating energy-efficient systems and environmentally responsible practices. Anupam Mishra, Akashwani News, Jewar, Gautam Buddh Nagar.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा और उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। श्री मोदी ने ये बात कल शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया के तौर पर काम किया था। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में खासकर खरीफ के मौसम से पहले पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर पहले से योजना बनाने के महत्व पर भी चर्चा की।
Delhi government has taken a step to strengthen the media and entertainment sector by signing a memorandum of understanding with Prasar Bharati to develop the national capital into a global hub. The agreement was formalized through Delhi Tourism and Transportation Development Corporation at Bharat Mandapam during the International Film Festival in New Delhi yesterday. The initiative aims to create a state-of-the-art integrated ecosystem bringing together key segments of the media industry including film, television, animation, visual effects, gaming and comics on a single platform.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उत्पन्न वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है और देश ने संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया है। नई दिल्ली में कल शाम निजी मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने और सुरक्षित रखने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों ने आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित की है। श्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगभग शून्य प्रभाव के साथ स्थिर आपूर्ति बनाए रखी है। वहीं सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। वीडियो में ये कहा गया है कि देश में बड़े संकट के कारण लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी सनसनीखेज खबरों पर विश्वास नहीं करने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने का आग्रह किया है।
The first edition of the Shillong International Film Festival concluded at the State Convention Center in Shillong yesterday, marking a significant step towards promoting cinema in the Northeast. The three-day festival was held from March 25th to 27th. Over the 3 days, the festival featured film screenings, master classes, student film competitions and technology exhibitions, drawing participation from artists, students and cinema enthusiasts. Officials stated that the initiative aims to strengthen the regional film ecosystem and encourage emerging filmmakers. The success of this festival highlights Meghalaya's growing prominence as a vibrant hub for cinema and creative expression.
मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल ओलावृष्टि और गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा में 31 तारीख तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में गरज और चमक के साथ तूफान आने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम आज बना रहेगा।
On the fourth day of the inaugural Khelo India Tribal Games in Chhattisgarh, competitions in swimming, weightlifting, football and wrestling will continue today. In football, four group stage matches in the men's category are scheduled today. In weightlifting, finals will be held in the women's 69 and 77 kilogram categories and the men's 88 and 94 kilogram categories. Swimming finals will feature the men's and women's 100 meter freestyle, 50-meter backstroke and the 4x100-meter medley relay. The games began on the 25th of this month and will continue till 3rd of April with over 3,000 athletes from 30 states and union territories competing across 7 disciplines.
और इन्हों अब IPL की बात कर लेते हैं। IPL क्रिकेट का 19वां सत्र आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से एन चिम्मास्वामी स्टेडियम में होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 2 महीने चलने वाला ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। और अब श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले रेनू से जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
Thank you, Farhat. Beginning with Chennai Metro, the Airports Authority of India has warned the public about fake job offers at Madurai Airport. It said fraudsters are asking for money in exchange for jobs. AAI clarified that it never asks for payment and only announces jobs on its official website. People are advised to stay alert and report any suspicious activity. Another news from Chennai Metro, the Indian Army Corps of Electronics and Mechanical Engineers has partnered with IITM Pravartak Technologies Foundation to develop indigenous defense technologies. A new center has been set up in Awadhi to support innovation, improve military equipment and reduce dependence on foreign technology. Moving on to Bengaluru Metro, in observance of Mahavir Jayanti, the Greater Bengaluru Authority has announced a complete prohibition on animal slaughter and the sale of meat within its jurisdiction on Monday, March the 30th. As per the directive, all slaughterhouses in the city will remain closed and meat shops will suspend operations for the day. This measure has been implemented to honour the sentiments associated with the auspicious occasion, which holds significant importance for the Jain community. Or Farhat, ek aur news hai Bengaluru se. The Bengaluru East City Corporation has presented its first budget for 2026-27 with a total outlay of ₹3,890 crore. Over 600 crore is allocated for infrastructure including roads, flyovers and footpaths. Plans also include flood control under the Sponge City model, new health centers, clinics and environmental projects like tree planting and lake maintenance, which are an integral part of any budget, I think. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. Telangana Chief Minister Revanth Reddy virtually addressed the Harvard Kennedy School's first AI symposium last night, making history as the first Indian leader to speak at this prestigious forum. Mr. Reddy called AI a double-edged sword, noting it boosts productivity but can also make decisions independently. He highlighted Telangana's plans for the Bharat Future City initiative, featuring an AI-powered green energy city, and promoted the state as a global hub for sustainable industries, electric vehicles, and China Plus One manufacturing. He also proposed a people credit system to ensure AI companies help reskill workers and urged ethical use of AI while inviting global investment in Hyderabad. Another news from Hyderabad Metro. Telangana's Tourism and Culture Minister Juppalli Krishna Rao has been honoured with the prestigious Grand Prize for Contribution to World Peace at an international Buddhist conference held in Hyderabad yesterday. Accepting the honour, the minister credited Chief Minister A. Revanth Reddy and the Telangana government for their commitment to promoting the teachings of Lord Buddha's compassion, peace and non-violence. And let's move on to you, Farhat, for the remaining metro news regarding Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी रेनू, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली फिल्मोत्सव से जुड़ी खबर से। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। इस फिल्मोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वैश्विक सिनेमा, सृजनात्मक उद्योग और फिल्म पर्यटन क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म लेखक और निर्देशक निखिल आडवाणी ने कहा कि दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थल साबित हो सकते हैं। ये फिल्मोत्सव विख्यात अभिनेता और फिल्म निर्माता गुरुदत्त की जन्मशती के अवसर पर आयोजित किया गया है। फिल्मोत्सव में उनकी कालजयी फिल्म प्यासा सहित अन्य प्रतिष्ठित फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब प्रतिदिन लगभग 6,300 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संशोधित व्यवस्था में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 3,375 सिलेंडर प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं। और अब मुंबई का रुख करते हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम ने सार्वजनिक भागीदारी के साथ स्वच्छता में सुधार लाने के लिए मुंबई क्लीन लीग 2026 की शुरुआत की है। इस पहल में आवासीय सोसाइटियों, झुग्गी झोपड़ियों, बाजारों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। नागरिक ऑनलाइन या शहर भर में लगाए गए QR कोड के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में ई यंत्र रोबोटिक्स प्रतियोगिता और इनोवेशन चैलेंज का भव्य समापन समारोह 2 दिनों तक चल रहा है। 51 कॉलेजों के लगभग 223 छात्र रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं और परियोजना प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में थीम आधारित प्रतियोगिताएं, स्थानीय प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और रोबोटिक्स में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास शामिल है। साथ ही AI, स्वचालन और रोबोटिक्स पर वार्ता और लाइव डेमो भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। और अब हम आखिरी खबर की ओर रुख कर रहे हैं, कोलकाता की ओर। कोलकाता में विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग ने पुलिस की निगरानी बढ़ा दी है। आयोग ने पुराने मामलों की त्वरित जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक आयोजनों में कड़ी सुरक्षा और सीमाओं पर गश्त और जांच बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर पाने पर उनके खिलाफ अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
Aur Enu, ab hum itihas mein darj kuch महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और आज है 28 मार्च तो सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं क्या होगा आज खास
यस सो ऑन दिस डे इन द ईयर 1737 द मराठा फोर्सेस लेड बाय पेशवा बाजी राव द फर्स्ट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड डिफीटेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ दिल्ली सिग्निफिकेंटली वीकनिंग द मुगल एम्पायर्स होल्ड ओवर नॉर्दर्न इंडिया In 1854, on this day, France and Great Britain formally declared war on Russia, marking the major escalation of the Crimean War.
और वहीं रेनू अगर बात की जाए सन 1930 की तो आज ही के दिन तुर्की के कई शहरों का नाम बदला गया राजधानी अंगोरा को अंकारा और कॉन्स्टेंटिनोपोल का नाम बदलकर इस्तांबुल किया गया
Yes, and on this day in the year 1939, nationalist forces led by General Francisco Franco captured Madrid, effectively ending the three-year-long Spanish Civil War.
1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी से बचकर बर्लिन पहुंचे
जी बिल्कुल एंड आफ्टर हिज हिस्टोरिक ग्रेट एस्केप फ्रॉम द ब्रिटिश मॉनिटर्ड हाउस अरेस्ट इन कलकत्ता इज द मेन इवेंट ऑफ दिस डे ऑफ द ईयर 1941 एंड ऑन द सेम डे दैट इज 28th ऑफ मार्च इन द ईयर 1979 द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस इट्स मोस्ट सीरियस कमर्शियल न्यूक्लियर एक्सीडेंट At the Three Mile Island plant in Pennsylvania due to a partial reactor meltdown.
और रेनू वहीं सन 2008 में केंद्र सरकार ने 40 उत्पादों के निर्यात से रियासतें समाप्त करने की घोषणा की
And on this day in the year 2015, Indian badminton player Saina Nehwal became the first Indian woman to reach the world number one ranking in badminton after defeating Yui Hashimoto in the semifinals of the India Open.
जी बिल्कुल और ये ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में कैरोलिना मारिन की हार के बाद हासिल की और इसी साल वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय भी बनी
जी
तो ये तो थी इतिहास की बात अब आइए हम अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां जानेंगे कुछ शख्सियतों के बारे में
जी बिल्कुल एंड बिगनिंग विद अ ट्रिब्यूट टू श्रीनाथ त्रिपाठी जी हु वाज एन इंडियन कंपोजर हुज एक्टिव इयर्स वर फ्रॉम द 1930s टू द 1980s त्रिपाठी'स मल्टीफेसेटेड वर्क रेंज इंक्लूडेड बीइंग अ कंपोजर writer, actor and director of films. His debut film as an independent composer was Chandan in the year 1942. He was the first composer to make use of the slogan Jai Hind in a song in films during the end of the British Raj. The song was Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Ye Hind Ki Kahaniya from the film Mansarovar which was released in the year 1946. He gained popularity as an actor when he started playing the role of Hanuman in the mythological and religious films like Homi Bhadia's Shri Ram Bhakta Hanuman and Hanuman Patal Vijay. Tripathi turned to direction in 1957 starting with Rani Roopmati. Two of his films with Nirupa Roy and Bharat Bhushan, that is Rani Roopmati and Kavi Kalidas, are cited as having cinematic merit and unforgettable music. So let's listen into this song from the movie Rani Roopmati.
लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं मेरा सुना पड़ा रे संगीत मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट के आजा मेरे मीत
इन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। दुर्गा पूजा, बजरंगबली, रामलीला, लाल किला, कवि कालिदास, नादिर शाह, जय चित्तौड़, दिल्ली दरबार जैसी कई धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों को सुरीली धुनों से सजाया श्रीनाथ त्रिपाठी ने।
जी बिल्कुल। इन द ईयर 1935 त्रिपाठी अराइव्ड इन बॉम्बे एंड फाउंड वर्क एज अ वायलिनिस्ट असिस्टिंग म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी एट बॉम्बे टॉकीज। हिज फर्स्ट फिल्म एज अ कंपोजर वॉज चंदन, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड ही continued to compose for films like Janam Janam Ke Fere in the year 1957, where the song Zara Samne To Aao Chaliye became the top Binaka Geet Mala song.
Chup chup chalne mein kya raaz hai, yun chup na sakega parmatma, meri aatma ki ye aawaz hai.
Zara saamne to aao chaliye, chup chup chalne mein kya raaz hai, yun chup na sakega parmatma, meri aatma ki ye aawaz hai. Zara saamne to
trained as a classicist, the popularity of his songs from Rani Roopmati, Sangeet Samrat Tansen and other films has been attributed to Tripathi's mixing of Rajasthani folk with musical instruments like Shehnai and mandolin, which never offended sensibilities yet had the pulsating dance-like equality. His experimental compositions like Na Kisi Ki Aankh Ka Noor Hoon and Lagta Nahi Hai Dil Mera from the film Lal Kila remain popular, but here we are going to listen to another beautiful song composed by S.N. Tripathi.
पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों में विशेष पहचान बनाने वाले मधुर गीतों के इस संगीतकार एसएन त्रिपाठी को हमारा शत शत नमन।
जी,
और अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक और हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ और बहुप्रतिभा लेखक गोरख प्रसाद को। ज्योतिष और खगोल के वो प्रकांड विद्वान थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के परीक्षा मंत्री भी कई वर्ष तक रहे। गोरख प्रसाद काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विज्ञान परिषद के अध्यक्ष रहे और बनारस मैथमेटिकल सोसाइटी के वो अध्यक्ष भी रहे।
Moving on to Lady Gaga, who is an American singer, songwriter and actress, and Farhat unka aaj birthday hai. So Gaga began performing as a teenager, singing at open mic nights and acting in school plays. She rose to prominence the following year with her debut album, the electropop record The Fame, and its chart-topping singles Just Dance and Poker Face. The follow-up EP The Fame Monster, along with singles Bad Romance, Telephone and Alejandro were also successful. And during this period, Gaga ventured into acting, playing leading roles in the miniseries American Horror Story Hotel, which was in the year 2015, for which she received a Golden Globe Award for Best Actress and the critically acclaimed music drama A Star Is Born. She also contributed to the latter's soundtrack, which yielded her fourth US number one single Shallow and made her the first person to win an Academy, a Grammy, a BAFTA and a Golden Globe Award in 1 year. So here we're going to listen to Lady Gaga singing Shallow from A Star Is Born.
Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard?
और आज के दिन हमें अलविदा कहा जाने माने भारतीय चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने एम एफ हुसैन एस एस रजा और के एच आरा आदि के साथ साथ एफ एन सूजा भी प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्य रहे। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी के वो पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत पहचान मिली। उन्हें उनके आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए भी जाना जाता है।
And today is the birthday of Akshay Khanna, who is an Indian actor who appears in Hindi films. He has received two Filmfare Awards and is the son of late actor Vinod Khanna. Here we're going to listen to his song from the movie Aa Ab Laut Chale, and later on listen to a comic dialogue from the movie Hangama. So let's listen into this song first.
अब लौट चले हो आ अब लौट चले
And Farhad has worked in so many movies, to name a few. Border, which emerged as a critical and commercial success, earning him the Filmfare Best Debut Award and a nomination for Filmfare Award for Best Supporting Actor. He rose to prominence with the romantic drama Taal and comedy drama Dil Chahta Hai, which won him a Filmfare Award for Best Supporting Actor. And not to forget the romantic comedies Hangama and Hulchul, the mystery, murder mystery 36 Chinatown, and another action thriller Race. But here we're going to listen to a dialogue from the movie Hangama and make our listeners and us laugh along with it.
Anjali, main aa gaya tumhe le jaane ke liye, bahar aao.
Are kiska kaam hai bhai, kaun ho tum?
Itni jaldi mujhe bhul gaye? मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए।
एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? लड़की तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है?
प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी।
अरे चुप कर भिखारी,
अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ से यहाँ और मेरे सामने पूछो। अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना, तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा।
अरे उसके लिए मूछवा होनी चाहिए, ऐसे दफा हो जा वरना हम पुलिस को बुलाए हैं।
पुलिस तो क्या, सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूँ तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। और तू कर भी क्या सकता है तिवारी, अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा।
24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है।
और रेनू इसके अलावा उन्होंने हमराज, दीवानगी जैसी फिल्मों से नेगेटिव किरदार में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। और धुरंधर को आप कैसे भूल सकते हैं, जिस तरीके से इसमें इन्होंने अदाकारी दिखाई और स्क्रीन प्रेजेंस दी वो काफी लोकप्रिय हो रही है।
एग्जैक्टली फरहाद, Today we are also paying tributes to Maurice Alexis Jarre, who was a French composer and conductor, one of the giants of the 20th century. Film music was among the most sought-after composers in the movie industry and a creator of both subtle underscoring and grand sweeping themes, not only writing for conventional orchestras but also experimenting with electronic sounds later in his career. And to name a few of his films that he composed the scores for: Lawrence of Arabia in the year 1962, The Train, Muhammad, Messenger of God, Lion of the Desert, Witness and Ghost. But here, dear listeners, the theme track you're listening in the background is from the movie Lawrence of Arabia. So let's listen in more to this. And not to forget Baroness Maria Augusta von Trapp, who was the stepmother and matriarch of the Trapp family singers. She wrote the story of the Trapp family singers, which was published in 1949 and was the inspiration of the 1956 West German film The Trapp Family, which in turn inspired the Broadway musical The Sound of Music and its 1965 film version. So here we're going to listen to my favorite things from the movie The Sound of Music.
Tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा. तो फरहत और रेनू को अनुमति दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने
की. Yes, and stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thank you for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.